अनगार धर्मामृत लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वैशायानं, नमो लोये सौभसाहूनं। प्रणम्य वीरं परमावबोधं, आशाधरो ोपन्यधर्मामृतधर्मशास्त्र पदानि किञ्चित् प्रगटीकरोति। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह अनगार धर्मामृत नामक ग्रंथ है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 11 पर, 11 नीचे की लाइन वहां से पढ़ेंगे। कल हमने 5 नंबर का श्लोक पढ़ा था, उसका अर्थ भी देखा था, अब उसका विशेषार्थ देखने जा रहे हैं। अर्थ दोबारा पढ़कर फिर विशेषार्थ पढ़ेंगे। पहले तो यहाँ सिद्धों को, अरिहंतों को, आचार्यों को वगैरह नमस्कार किया है, उनका स्मरण किया है। अब कहते जो उनके द्वारा जो धर्मोपदेश मिला है, जिसको देशना कहते हैं, उसका भी यहाँ स्मरण करते हैं। तो जिस देशना ने धर्मोपदेश के अनुग्रह से, उसके उपकार के कारण प्रतिदिन अनेक श्रोतागण धर्म को ठीक रीति से जानते हैं, अनेक श्रोतागण अपने संदेह को दूर करते हैं, अनेक अन्य श्रोतागण धर्म विषयक भ्रांति से बचते हैं, कुछ अन्य श्रोतागण धर्म पर अपनी दृढ़ श्रद्धा को दृढ़ करते हैं तथा कुछ अन्य श्रोतागण धर्म का पालन करते हैं। और जिस देशना के अनुग्रह से वक्ता, पहले तो श्रोता की बात की, अब वक्ता भी, उसको भी कुछ फायदा नहीं कि नहीं कहते, तो कहते प्रतिदिन अपने शुभ परिणामों से आगामी पाप गंध को चहुं ओर से रोकता है और पूर्व उपार्जित कर्म की निर्जरा करता हुआ आनंदित होता है। वह देशना फूले फले, उसकी खूब वृद्धि हो, यानी ये धर्म उपदेश का प्रचार हो जाए। अब इसी का विशेषण पढ़ेंगे, जिसके द्वारा, किसकी बात चले, देशना, तो जिसके द्वारा जीव नरक आदि गतियों से निवृत्त होकर सुगति में रहते हैं, या जो आत्मा को सुगति में धरता है, ले जाता है, उसे धर्म कहते हैं। पहले धर्म क्या है उसको बता, तो नरकादि कुगतियों से बचा कर सुगतियों में ले जाता है, धरता है, उसको यहाँ धर्म कहा। यह धर्म शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ है। व्युत्पत्ति यानी वो शब्द कैसा तैयार हुआ, धारयति इति धर्म, आत्मा को धरता है, किसमें धरता है, तो सुगति में, जो व्यावहारिक धर्म का सूचक है। व्यावहारिक धर्म यानी जिसको हम पुण्य भी कहते हैं। यथार्थ में तो जो जीवों को संसार के दुखों से छुड़ाकर उन्हें उत्तम सुखरूप मोक्ष गति में ले जाता है, वही धर्म है। पहले सुगति में धारण करने वाला वो धर्म, जिसको हम कहेंगे पुण्य कहना, जिसको लौकिक में धर्म भी कहते हैं। और सच में देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, तो धर्म क्या है, तो संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुखरूप मोक्ष गति में ले जाता है ना, उसकी मोक्ष पर्याय प्रकट होती है, वही धर्म है। धर्म की शुरुआत है परंतु वो परिपूर्णता है, वो कहाँ ले जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एक नंबर जो है रत्न ग्रंथ शौकाचार्य दो नंबर का श्लोक है, अभी यहाँ आगे देखते हम। वह धर्म रत्नत्रय स्वरूप है अथवा मोह और क्षोभ से रहित आत्म परिणाम स्वरूप है। ये प्रवचन सार गाथा साथ में बताया था धर्म क्या है, तो मोह और क्षोभ से रहित यानी चारित्र कुल धर्म ऐसा कहा, और चारित्र क्या है, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, ऐसी ये प्रवचन सार गाथा साथ में बताया। वो तो बंद कारण विषम वगैरह वो तो इंद्रिय सुख की बात होगी शायद।
साम्य धर्म है वो ये गाथा नंबर सात
बस इतना ही लिया है, वो गाथा यहाँ उद्धृत नहीं की, कहाँ लिखा है गाथा कहाँ लिखा है
प्रवचन सात दो नंबर का प्रवचन सात गाथा सात।
हाँ वो मैंने बताया आपको, और उस सात नंबर की गाथा में क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ ये बताया है तो चारित्र खुल धर्म, चारित्र ही धर्म है, और चारित्र क्या है, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, उसका यहाँ धर्म कहते हैं। यही हम क्षोभ यानी जो अकुलता इस तरह अकुलता
क्षोभ घर में हमें ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि अपने मन की विरुद्ध सभी बातें बन रही है तब तो भूल जाता
शो है। होता है ना कि
कोई भी चीज अपने हिसाब से नहीं होती है, हर जगह धंधे में भी ऐसा होता है, हम चाहते कुछ हमको प्रिंटर प्रॉमिस करता कि देता हूँ देता हूँ देता नहीं शो।
यानी हम क्षोभ यानी कषाय आप ले सकते हैं, कषाय से भी क्या होता है जीव को क्षोभ होता है, हाँ दोनों भी, मोह में दर्शन मोह ले सकते हैं, क्षोभ में चारित्र मोह ले सकते हैं। अथवा तीन नंबर, वस्तु का यथार्थ स्वभाव ही उसका धर्म है। नीचे लिखा देखो, धम्मो वस्तु थवाओ कमादि भावो या दस विधो, क्या लिखा है धम्मो हो बनना चाहिए, रणत्यम च धम्मो जीवाणु रक्षण धम्मो, हाँ ये धम्मो ही शब्द है वो, देखो धम्मो वत्थ सहावो खमादि भावो यदस विहो धम्मो रणत्यम च धम्मो जीवाणु रक्षण धम्मो, यानी वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, धर्म की परिभाषा अलग अलग है, ये स्वभाव रूप धर्म है, वो तो धर्म प्रकट नहीं करना है, वो तो है। दूसरा है क्षमादि भाव, जैसे हम कहते उत्तम क्षमा आदि दस भी हो, दस प्रकार का धर्म है, यानी उसके दस लक्षण रूप धर्म है। रयनत्रयम च धर्म, रत्नत्रय स्वरूप धर्म है, और जीवाणम रक्षणम धर्म, जीवों की रक्षा का जो परिणाम है वह जीव जाय जिसको कहते हैं। इस तरह से धर्म के अलग अलग यहाँ डेफिनेशन लक्षण बताए। देखो ऊपर क्या लिखते, जहाँ तीन लिखा था चौथे नंबर के लाइन में, वस्तु का यथार्थ स्वभाव ही उसका धर्म है, या उत्तम क्षमा आदि दश लक्षण रूप धर्म है, ऐसे धर्म के उपदेश को देशना कहते हैं। पहले में पहले धर्म क्या है इसके लिए उन्होंने इतने अलग अलग तरह से उसके लक्षण बताए, ऐसे धर्म का जो उपदेश है उसको देशना, देशनाथ को सुनकर अपने क्षोभम के अनुसार यानी अपनी बुद्धि के अनुसार जितने उसकी बुद्धि की लेवल है उसके अनुसार श्रोता में जो अतिशय का आधान होता है, अतिशय का आधान आधान का अर्थ देख लेते हैं क्या? आधान क्या होता है? अतिशय का आधान होता है, यही उस देशना का अनुग्रह या उपकार है। ऊपर क्या लिखा है? आधान नहीं, अतिशय का आधान। संस्कृत में कुछ ये तो विशेष अर्थ है ना, ये ऊपर नहीं होगा। ऐसे धर्म के उपदेश को देशना श्रोता में जो अतिशय का आधान होता है, यानी अतिशयता को वो प्राप्त होता है, यानी वो प्राप्त होना वही देशना का अनुग्रह या उपकार है। वो धारण करना, ऐसे उसका अतिशय का धारण करना होता है आधान। ये गर्भाधान वगैरह शब्द आते हैं देखो, धान धान गर्भाधान ये शब्द है, क्रिया में आता है गर्भाधान। आधीन अलग बात है, यानी अतिशय का धारण करना होता है ऐसा मुझे लगता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, आपको मिला तो बता देना आधान शब्द का। श्रोता अनेक प्रकार के होते हैं। जिन भव्य श्रोताओं के तीव्र ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है, देखो ज्ञानावरण का तीव्र उदय, उसका अर्थ क्या है? ज्ञानमंद है, बराबर। तो ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय होता है, वे धर्मोपदेश सुनकर तीव्र उदय होता है। आधान श्योरिटी प्लेज डिपॉजिट प्रेगनेंसी कंसेप्शन, इन्हें बोला ना धारण करना। डिपॉजिट होना यानी अतिशयता का धारण करना होता है, आधान होते ना धारण करना होता है। देखो जिन भव्य श्रोताओं के तीव्र ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है, वैसे क्षोभम होता है, ये क्या कहना चाहते हैं? अपन ज्ञानावरण का तीव्र उदय तो ज्ञान की मंदता सूचित करता है। सभी भव्य ही लिए है, परंतु देखो
फिर मत भी लिया है।
हम पहले पढ़ लेते फिर उसमें जो कुछ सोचना है वो सोचेंगे। जिन भव्य श्रोताओं के तीव्र ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है, वे धर्मोपदेश सुनकर धर्म का यही स्वरूप है या धर्म ऐसा ही होता है ऐसा निश्चय करते हैं, इस तरह उनका धर्म विषय अज्ञान दूर होता है। जिन श्रोताओं के ज्ञानावरण कर्म का मंद उदय होता है, वे देशना को सुनकर धर्म विषय संदेह को, पहले तो अज्ञान था वो दूर हुआ, यही धर्म है या धर्म का अन्य स्वरूप है, धर्म इसी प्रकार होता है या अन्य प्रकार होता है, ऐसा जो संशय था उसको दूर करते हैं। जिनके ज्ञानावरण कर्म का मध्यम उदय होता है, ऐसे श्रोता उपदेश को सुनकर धर्म विषयक अपनी भ्रांति से यानी धर्म के यथोक्त स्वरूप को अन्य प्रकार से समझ लेने से विरत हो जाते हैं, भ्रांति से हट जाते हैं, उनके भ्रांति नहीं होती, अर्थात धर्म को ठीक ठीक समझने लगते हैं। ये तीनों ही प्रकार के श्रोता भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि अथवा सम्यक्त्व के विषय में अव्युत्पन्न होते हैं, यानी सम्यक्त्व के विषय में अभी उनको जानकारी नहीं थी, इसे भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि लिया। क्रूर परिणामी मिथ्या दृष्टि तो उपदेश का पात्र ही नहीं है। केवल वो ज्ञानावरण का मंद उदय या तीव्र उदय उसकी बात नहीं है, उसके परिणाम कैसे हैं तो मंद होने चाहिए। क्रूर परिणामी जिसको हम भद्र परिणामी कहेंगे, क्रूर परिणामी वाले के तो ये उपदेश सुनने की योग्यता ही नहीं, उसका पात्र ही नहीं है। अव्युत्पन्न है उससे संबंध में अज्ञानी यानी सम्यक्त्व के विषय में अभी वो जानकार नहीं था और वो सुनकर उस संबंधी उसका अज्ञान दूर हुआ, संशय दूर हुआ, निश्चय हुआ, इस तरह से लेना। जो सम्यक दृष्टि भव्य होते हैं अभी हम उसको ऐसे रखेंगे क्योंकि तीव्र उदय फिर भी वो तो यथा योग्य तीव्र उदय की बात है। वहां पर वो नक्की क्या कहना चाहते, वो तीव्र मंद और मध्यम उन्होंने जो भेद किए हैं ऐसे क्यों किए वो मुझे मेरे ख्याल में नहीं आए। आगे पढ़ेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। आवरण अधिक है नहीं, उसमें वो तीनों ही है कि धर्म के देने देशना समझ में आ रही उनके, इतना तो ज्ञानावरण का उघाड़ है इतना लिया और फिर उसमें उन्होंने तरतमता से तीन भेद किए, बस इतना ही लेना। जो सम्यक दृष्टि भव्य होते हैं उपदेश को सुनकर उनकी आस्था और दृढ़ हो जाती है कि यह ऐसा ही है, यानी सम्यक दृष्टि हुआ अभी क्यों देशना सुनेगा, ऐसा नहीं है। धर्मोपदेश सुनेगा वो तो शायद दूसरों को भी बताएगा परंतु वो सुनता नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सम्य दर्शन हुआ तो अभी उसको सुनने की क्या आवश्यक है, तो उसकी तो श्रद्धा उससे दृढ़ होती चली जाती है और शास्त्र उनके तो गहरा अध्ययन उसका होगा। और भी जो उनसे भी उत्तम सम्य दृष्टि होते हैं वे उपदेश को सुनकर उसके आचरण में तत्पर होते हैं, इसका वो आगे की प्रतिमाएं वगैरह धारण करेंगे, आचरण में तत्पर होते हैं। प्रतिदिन उपदेश सुनने से श्रोताओं को प्रतिदिन यह लाभ होता है, यानी वो दृढ़ता आती है, ये प्रतिदिन सुनने से लाभ हो जाता है। वक्ता को भी लाभ होता है, पूर्वार्जित एक्चुअली पूर्वोपार्जित लिखते हैं, पूर्वार्जित ठीक है, अर्जित यानी उत्पन्न हुआ, उपार्जित को या अर्जित को एक ही बात है, यानी पहले बंधे हुए पूर्वार्जित पुण्य कर्म के विपाक से, यानी वो कर्म अभी उदय में आया है, होने वाले शुभ परिणामों से ज्ञानावरण आदि कर्म रूप आगामी पाप बंध का निरोध होता है। अर्थात मन वचन काय के व्यापार रूप योग के द्वारा आगामी पाप कर्म रूप होने के योग्य जो पुद्गल वर्गणा है उस रूप से परिणमन करती वे तद्रूप परिणमन नहीं करती, यानी वो पुद्गल परिणाम जो वर्गणा है वो पाप रूप नहीं बंधेगी उस समय। अभी ज्ञानावरण तो बंधेगा, वो तो दसवें गुण स्थान तक बनता है, परंतु असाता आदि पाप कर्म नहीं बंधेंगे उस समय, वो पुण्य प्रकृतियां बंधेगी और ज्ञानावरण आदि बंधेगी परंतु वो मंद अनुभव वाले बंधेगी क्योंकि यहाँ विशुद्धि ज्यादा है, इतना अर्थ लेना इसका। इस तरह वक्ता के केवल पाप कर्म के बंध का निरोध ही होता हो ऐसा नहीं है, यानी बस पाप कर्म नहीं बंधे उतने काल तक तो कहते मात्र इतनी बात नहीं है, तो क्या और क्या होता है, पूर्व संचित पाप कर्म का भी एक देश से क्षय होता है, यानी ऑलरेडी जो पूर्व में पूर्व भवों में कितने ही सागरों पहले भी जो कुछ पाप बांधे हैं, हाँ तो कहते एक देश से क्षय होता है उसी कारण निर्जला होते अधिक मात्रा में फिर जाते, क्योंकि ये ज्ञानी लिया है ना जीव, इसलिए सारांश है कि देशना धर्मोपदेश रूप होने से स्वाध्याय नामक तप का भेद है, इसको तप कहा है। अतः अशुभ कर्मों के संवर के साथ, संवर यानी वो बंद नहीं होना या आश्रय नहीं होना, उसको यहाँ संवर कहेंगे, निर्जरा के होने पर भी कि अशुभ कर्मों के संवर के साथ निर्जरा के होने पर भी यानी अशुभ कर्म नहीं बंध रहे और पहले बंधे हुए अधिक मात्रा में खिर जा रहे, वक्ता का देशना में प्रशस्त राग रहता है क्योंकि धर्मोपदेश दे रहा है तो उसका ये शुभ राग है, सामने वाले जीव समझे इसे, उनका भी कल्याण हो, इस प्रकार का वो शुभ राग है, प्रशस्त राग है। यहाँ आश्रय नहीं होना, उसको यहाँ संवर कहेंगे। निर्जय राग के होने पर भी कि अशुभ कर्मों के संवर के साथ निर्जरा के होने पर भी इन्हें अशुभ कर्म नहीं बन रहे और पहले बंधे हुए अधिक मात्रा में खिर जा रहे। वक्ता का देशना में प्रशस्त राग रहता है क्योंकि धर्मोपदेश दे रहा है तो उसका ये शुभ राग है, सामने वाले जीव समझे इसे, उनका भी कल्याण हो, इस प्रकार का वो शुभ राग है, प्रशस्त राग है। अतः उस प्रशस्त राग के योग से प्रचुर पुण्य कर्म का आश्रय होता है। एक पुण्य बांधने के लिए ही कर रहा है परंतु वो सहज रूप से होता है, अभी उसके ऐसे परिणाम है कि सभी जीव इसको समझे और उसके फल रूप वहाँ पुण्य कर्म का आश्रय चल रहा है। और पूर्व पुण्य कर्म के विपाक की अधिकता से पहले जो पूर्व कर्म बंधे है तो उसमें और अनुभाग बढ़ता है। अभी वर्तमान में जिसको कहेंगे कि पुण्य कर्म की भी क्वालिटी अलग अलग है, धर्मोपदेश देने के पुण्य परिणाम जो है तो उसमें पुण्य का अनुभव अधिक बन रहा है, पुण्य प्रकृति। उसी परिणाम के द्वारा पुराने जो पुण्य प्रकृति बंधी उनका अनुभव बढ़कर उदय में आता है, ये अनुभव का संक्रमण भी उसको जिस रूप से बनती है उस रूप से टर्न होते हैं वो पुराने भी बंधे हुए। वर्तमान जो परिणाम है तो वर्तमान में नया बंध तो होता ही होता है, पूर्वबद्ध कर्मों में भी चेंजेस हो जाते हैं, जैसे परिणाम है उस प्रकार के हम कहेंगे अभी यहाँ पर। इसलिए कहते अकेले उदय के वक्त नहीं, सत्ता में भी हो जाते हैं, उदय में भी होते हैं, सत्ता में भी पड़े। और पुण्य प्रकर्म के पूर्व पुण्य कर्म के विपाक की अधिकता, विपाक की अधिकता यानी उसका अनुभाग अधिक होकर उसका फल मिलेगा, नवीन कल्याणकारी परंपरा की प्राप्ति होती है, यानी उसका ऐसा ही पुण्य का सहज रूप से उदय होता रहता है, अधिक पुण्य का उसको फल मिलता है। इस प्रकार भगवान सिद्ध परमेष्ठी आदि के गुणों का स्मरण रूप मुख्य मंगल करके, हमने देखा ना सिद्ध परमेष्ठी आदि सिद्धों की बात की, आचार्यों की है, अरिहंतों की, तीर्थंकरों की वगैरह, आराती आचार्यों की, गणधरों की भी की थी, प्रत्येक बुद्ध की थी, इन सब की फिर देशना की भी उन्होंने वहां पर मुख्य मंगल किया, आदि के गुणों का स्मरण किया। अब कहते अब ग्रंथ देखो आराती के हमने अर्थ देखे, दो अर्थ होते हैं, आचार्य को ही आराती कहते हैं, एक बात आराध्य और आचार्य एकांतवाची है ऐसा एक जगह लिया, और अन्य जगह जो वक्ता के तीन भेद बताए, ये सर्वज्ञ भगवान जो तीर्थंकर है, फिर वो गणधर वगैरह है, श्रुत केवली केवली श्रुत केवली जो करते हैं, और तीसरा जो भेद बताए वो आराध्य इतना ही लिखा, केवल आराध्य इतना ही लिखा, यानी उसको भी उनके पश्चात होने वाली ये जब सब आचार्य है परंपरा से होने वाले उनको आराती होगा।
हाँ
वही है आराती में
आचार्य प्लस वक्ता,
ये ग्रंथकार आचार्य जो है आराती आचार्य, वक्ता कौन है इसकी बात चल रही है, और यहाँ उन्होंने ग्रंथकार कौन होते हैं उसकी बात बताई, यानी धर्मोपदेश जो स्वयं समझ कर जो धर्मोपदेश देते हैं, जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है, ऐसे आचार्यों का यहाँ नाम लिया था उन्होंने, यानी कुमकुंदाचार्य आदि में सबको लिया जिन्होंने वो इस काल में भी ग्रंथों की रचना की है, उनको आराती आचार्य कहा। अब कहते ये तो मुख्य मंगल हुआ, इन्हें परमेश्वरों को नमस्कार किया, देशना को भी नमस्कार, इन्हें उनके स्तवन हुआ। अब कहते अब ग्रंथकार 13 पृष्ठ पर आए हैं, पहली लाइन ग्रंथ का प्रमाण और ग्रंथ में कहे जाने वाले विषय के बहाने से ग्रंथ का नाम बतलाते हुए प्रकृत ग्रंथ को रचने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये कोई भी ग्रंथ रचना करते हैं उसकी ये पद्धति है, कोई भी निकाल के देखे, सबसे पहले मंगलाचरण रूप से परमेष्ठियों को वंदन करेंगे, नमन करेंगे, फिर ग्रंथ का प्रमाण यानी कितना ग्रंथ बड़ा लिखेंगे वो यहाँ लिख देंगे, ग्रंथ क्यों लिखा ये भी लिखेंगे यहाँ पर, अभी यहाँ लिखा है कि नहीं पता नहीं, और उसमें कौन सा विषय बताएंगे और विषय के अनुसार ग्रंथ का नाम होगा। जैनियों के ग्रंथ ऐसे ही है, उन नाम में ही उसके विषय का पता चलता है, ऐसा नहीं कि ऊपर नाम कुछ और हो और अन्य कुछ बातें अलग गप्पे लगाए हुए। समय सार है, मतलब तो पूरे समय सार शुद्धात्मा की वहां बातें है, प्रवचन सार उत्कृष्ट, प्रवचन उत्कृष्ट वचन, उसका सार उन्होंने उसमें भर दिया है। कोई भी ले लो, पंचास्तिकाएं, पांच अस्थिकाएं और काल द्रव्य, उसका भी उसमें छह द्रव्यों का वर्णन है, वो पंचास्तिकाएं है। अब यहाँ अनगार धर्मामृत, अनगार यानी मुनियों संबंधी वो सब बातें, सागर में तो हमने श्रावकाचार संबंधी, रत्नकरण श्रावकाचार, मोक्ष मार्ग प्रकाश, कोई भी ग्रंथ ले लो आप, आत्मा अनुशासन, आत्मा का अनुशासन कैसे चलता है उसकी बात है। हाँ, तो ये विशेषताएं हैं, तो नाम बताएंगे और उसमें विषय बताएंगे, फिर प्रकृत ग्रंथ को रचने की प्रतिज्ञा करते हैं, मैं इस ग्रंथ की रचना करता हूँ, इस तरह से प्रतिज्ञा भी करेंगे। ये सब पहले से पद्धति चली आ रही है ग्रंथ रचना की, वो छह नंबर का श्लोक, अथ धर्मामृतम पद्य द्विसहस्र्यादिशाम्यहम् निर्दुःखं सुखमिच्छन्तो भव्या श्रुणत धीधनाः। धीरूपी धन वाले, धी यानी बुद्धि, इसके अनंतर यानी अभी मंगलाचरण के पश्चात मैं 2000 पद्यों से धर्मामृत ग्रंथ को कहता हूँ। दुख से रहित सुख के अभिलाषी, निर्दुखम सुखम इच्छन्तो, दुख निर्दुख जैसे निर्मल यानी मल से रहित, निर्दुख यानी दुख से रहित, और क्या है सुखम इच्छन्तो, सुख की इच्छा अभिलाषी, इच्छा करने वाले बुद्धिशाली भव्य उन्हें उसे सुने। इसमें कितने हैं श्लोक, ये ग्रंथ है ना, पूरा ही एक ग्रंथ है ना धर्मामृत का, इसका और उसका मिलकर, हम आगे देखेंगे किस किस तरह से 2000 बनाए उन्होंने। विशेषार्थ, इस श्लोक के प्रारंभ में आए अर्थ शब्द का अर्थ मंगल है, अर्थ कहाँ है, अथ लिखा है, अर्थ शब्द नहीं वो अथ शब्द है, अथ धर्मामृतम पद्य है ना, मंगल। देखो पहला ऊपर संस्कृत पढ़ो, श्लोक के नीचे संस्कृत पढ़े, अथ का अर्थ क्या है, अथ डैश मंगले अधिकारे आनंतर्ये वा, यानी वो मंगल के अर्थ में अथ शब्द आया है, वो इन्वर्टेड में जो अर्थ लिखा है वो अथ होना चाहिए, समझ में आया क्या करेक्शन करना है। इस श्लोक के प्रारंभ में आए अथ शब्द का अर्थ मंगल है, कहा है सिद्धि बुद्धि जय वृद्धि राज्य पुष्टि तथा ओंकार, अथ शब्द और नांदी ये मंगल वाचक है, अथ शब्द का अर्थ अधिकार है। कोई भी प्रारंभ करते तो हम कहेंगे अथ, यानी नया अधिकार चालू हो गया। यह तो मंगल के अर्थ में। देखो नीचे एक श्लोक बताया हमने, ये जो अभी हमने हिंदी वाक्य पढ़ा ना, उसी का ये मूल श्लोक है। सिद्धिर बुद्धिर जय वृद्धि राज्य पुष्टि तथै वच ओंकारश्चाथ शब्दश्च नांदी मंगलवाचिन। यानी ये जो सभी शब्द है वो मंगलवाची है, मंगलवाचक है। कौन सी? सिद्धि बुद्धि जय वृद्धि राज्य पुष्टि ओंकार अथ और नांदी। हाँ नांदी करना हमने कल बताया ना उसके, यहाँ मंगलवाचक है। अथ शब्द का अर्थ अधिकार है। यहाँ से शास्त्र का अधिकार प्रारंभ होता है। अथ शब्द का अनंतर अर्थ भी है, यानी अनंतर कहते अथ यानी अब आगे, क्या कहने वाले हैं उसको अथ कहेंगे, शुरुआत के अब आगे। तो अनंतर अर्थ में भी उसको यूज करेंगे। निबद्ध मुख्य मंगल करने के अनंतर, निबद्ध मुख्य मंगल, मुख्य मंगल यानी परमेश्वरों को यहाँ सवन रूप किया, निबद्ध यानी वो रचना की, यानी वो मंगलाचरण की रचना की है। उसके अनंतर अथ शब्द का अर्थ अब उसके आगे, यानी अथ शब्द के उन्होंने दोनों प्रकार से अर्थ बताए।
अथ खल्लू मयो उसका क्या अर्थ? ये 93 की गाथा है प्रवचन मयो,
उसका पहले का क्या है श्लोक वो देखना पड़ेगा,
वहाँ से स्टार्ट होती है एक्चुअली ये सेकंड पार्ट।
हाँ तो अथ ने अब आगे, अब यहाँ से, यानी कोई देखो जो अधिकार की शुरुआत है ना, तो अथ शब्द लिखने की पद्धति और लास्ट में इति, अथ शुरुआत में और इति लास्ट में, क्योंकि ना इति सोपने टीका समाप्ता, तो ये अंत में लिखते हैं। और यहाँ अथ से शुरुआत हुआ, अथ धर्मामृत, यानी अब यहाँ से धर्मामृत ग्रंथ की शुरुआत होती है, ये यहाँ कहलाता है। धवलाकार वीरसेन स्वामी ने धवला के प्रारंभ में मंगल के दो भेद किए हैं, निबद्ध और अनिबद्ध, यानी निबद्ध मंगल और अनिबद्ध मंगल। ये धवलाकार वीरसेन स्वामी, धवला नाम सुना है कभी? हाँ हाँ हाँ, धवला नाम का शास्त्र है। वो क्या है यहाँ लिखा है, वो वीरसेन स्वामी ने उसकी रचना की। तो षटखंडागम आपने नाम सुना होगा, मूल आगम की जो पहले में पहली रचना हुई वो षटखंडागम, छह खंड उसके लिखे गए। तो उनके पहले पांच खंडों पर जो टीका लिखी है उसका नाम है धवला, इसको धवला टीका कहते हैं। छठा खंड इटसेल्फ महाधवला है, जिसको महाबंधन दूसरा नाम है, और जयधवला है उसमें से वो तो चूर्णी सूत्र और उसके ऊपर कषाय पाहुड़ के ऊपर जो टीका लिखी है उसमें भी स्टार्टिंग तो वीरसेन स्वामी ने ही की थी और फिर उनके शिष्यों ने उसको आगे बढ़ाया था उनके पश्चात, तो उसका नाम है जयधवला। तो यहाँ उन्होंने पहले में पहले मंगलाचरण किया, धवला ग्रंथ में सबसे प्रथम धवला का पहला श्लोक कहो या आर्या कहो या कुछ छंद कहो, मालूम है उसका क्या? कभी सुना है? सुना होगा शायद आपने। नमोकार मंत्र जो है वहाँ से लिया, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम, वहाँ मूल वो गाथा रूप से लिखा हुआ है, गाथा सूत्र जिसको कहेंगे। इसलिए हम कैसे गाते हैं उसको, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम, फिर सेकंड लाइन नमो वर्षायाणम नमो लोए सौवसाहून, ये गाथा रूप से वहाँ रचना हुई है। तो वहाँ उन्होंने कहा है कि उसके, यानी पहले तो बता दिया फिर उसकी टीका उन्होंने, ये मूल षटखंडागम में लिखा है। धवलाकार ने तो षट,
पहली बार हमें
षटखंडागम में
मिलता है, अन्य कोई शास्त्रों में ये वाली बात नहीं है। वो गाथा है यानी अध्यात्म है, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर दिया पांच पद में, तो ओरिजिनली दो लाइन में लिखा है, और उसको आप चाहे वो रात से बोल सकते हैं, लेकिन अभी आपने जो बोला वो प्रचलित है उस तरह से बोल रहे।
तो जो षटखंडागम की रचना हुई है पुष्पदन भूतबलि ने जो लिखी थी, उसमें सबसे पहला जो षटखंडागम का मंगलाचरण है वो है नमोकार मंत्र, और फिर उस नमोकार, क्योंकि धौलाकार ने क्या किया है, षटखंडागम का एक एक सूत्र एक एक गाथा लेकर फिर उस पर टीका की। तो षटखंडागम का ये जो मंगलाचरण रूप जो नमोकार मंत्र है उसको इन्होंने भी पहले लिखा ऊपर, फिर उसकी टीका की। तो टीका में उन्होंने ये बताया कि मंगल दो प्रकार के होते हैं, एक निबद्ध मंगल और एक अनिबद्ध मंगल। ग्रंथ के आदि में ग्रंथकार के द्वारा, आदि ने स्टार्टिंग में शुरुआत में ग्रंथकार के द्वारा जो इष्ट देवता नमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है, इष्ट देवता को यानी जो हम परमेष्ठी, हमारे इष्ट देवता ने क्या, ये कोई हमारी कुल देवता है वो बात नहीं है, हाँ। तो उसका नमस्कार निबद्ध करना है, उस नमस्कार को शब्दों में रचित किया, उसको निबद्ध करना है, श्लोकादि के रूप में लिख दिया जाता है, निबद्ध किया जाता है ना, क्या श्लोकादि के रूप में लिखा जाता है, उसे निबद्ध मंगल कहते हैं। जैसे आत्मख्याति में क्या लिखा उन्होंने सबसे शुरुआत में, बोलो आत्मख्याति में शुरुआत में क्या लिखा, हाँ, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभाव भावाय सर्व भावांतरच्छिदे, ये उन्होंने वहां मंगलाचरण के रूप में, ये निबद्ध मंगल कहने में आता। कोई भी जैसे कुमकुंदाचार्य में वंदित तो सर्व सिद्ध है धूम चल अनुपम, तो ये उनका निबद्ध मंगल हुआ, तो इसको निबद्ध मंगल कहते हैं। जैसे इस ग्रंथ के आदि में ग्रंथकार ने सिद्ध परमेष्ठी आदि का स्तवन निबद्ध कर दिया है, अतः यह निबद्ध मंगल है। धर्म का लक्षण पहले कहा है, वह धर्म अमृत के तुल्य होता है, क्योंकि जो उसका आचरण करते हैं वे अजर अमर पद को प्राप्त करते। देखो लौकिक में अमृत क्या बताता है, अमृत को पीने वाला वो अजर अमर हो जाता है, तो कहते ये धर्म अमृत के तुल्य, धर्मामृत ये ग्रंथ का नाम है, ये धर्मामृत ग्रंथ का ये क्यों लिखा उन्होंने नाम, तो कहते हैं ये जो धर्म अमृत के तुल्य है और उसका आचरण करने वाले अजर अमर हो जाते हैं, इस शास्त्र में उसी का कथन है, इसलिए इस शास्त्र को धर्मामृत नाम दिया गया है। ये ऊपर जो निबद्ध और अनिबद्ध की बात की ना, वहां पर वीरसेन स्वामी ने ऐसा बताया है, ये जो नमोकार मंत्र को षटखंडागम के आदि में लिखा है, षटखंडागम की रचना तो भूतबलि पुष्पदंत की है, पुष्पदंत ने पहले पांच वो लिखे हैं, तो कहते कि उन्होंने भी उसकी रचना नहीं की है, वो तो अनादि का है, नमोकार मंत्र अनादि का है, उन्होंने उसको, यानी ऐसा नहीं कि उन्होंने उसकी सबसे पहली रचना की, ऐसा भी नहीं है, तो ये अनादि मूल मंत्र जिसको हम कहेंगे वो चला आ रहा, ये उनकी अपनी रचना नहीं है, वो पहले भी
तो पहले से चला रहा है, लेकिन लिखित रूप में
उन्होंने लिखा है, परंतु उन्होंने वो शब्दात्मक रचना नहीं की है। जैसे ये वंदित तो सर्व सिद्ध कौन कुंदाचार्य ने लिखा है, अन्य अन्य आचार्यों ने अन्य रचना की, जैसे प्रवचन सार के शुरुआत में उन्होंने वो तो सुरस्व नरपति वंद उसकी बात की उन्होंने, तो जो मंगलाचरण है वो अलग अलग शब्दों में रचा जाता है, परंतु ये जो नमोकार मंत्र जिसको हम कहते हैं वो अनादि का है, यानी वहां उसको निबद्ध और अनिबद्ध रूप में बहुत सारी चर्चा की है धौला ग्रंथ। ये धर्मामृत नाम क्यों दिया उसको बताया, आगे पढ़ेंगे। पूर्व आचार्यों और कवियों ने भी शास्त्र में प्रतिपादित यानी बताया हुआ, प्रतिपादन करना यानी कथन करना, यानी शास्त्र में कथित वस्तु तत्व के कथन द्वारा शास्त्र का नाम कहाँ है ऐसा सुना जाता है। क्या कहते हैं? पूर्व के जितने आचार्य हैं उन्होंने जितने ग्रंथों की रचना की है और जितने कवियों ने भी शास्त्रों की रचना की है, तो वो वस्तु तत्व के कथन यानी उसमें जो कुछ प्रतिपादन किया है, जो वहाँ विषय कथन किया है, तो वैसा ही उसको नाम दिया है। इसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने वाला ग्रंथ। जैसे तत्वार्थ वृत्ति या यशोधर चरित्र, रुद्र भट्ट ने भी ऐसा ही कहा है, यह काव्यालंकार ग्रंथ युक्ति अनुसार करता हूं। परिमित अक्षर, परिमित यानी लिमिटेड, मर्यादित, परिमित अक्षर और मात्राओं के समूह को पाद कहते हैं, उसको चरण भी कहते हैं। पादों के द्वारा रचित छंद श्लोक या आर्यारूप वाङ्मय को पद्य कहते हैं। अक्षर और मात्रा के समूह यानी काना मात्रा जिसको हम कहते हैं वही अक्षर, वही मात्रा। पादों के द्वारा रचित छंद श्लोक या आर्यारूप वाङ्मय को पद्य कहते हैं। जैसे हमने रत्नकरण शावकाचार में उसका मंगलाचरण पहला श्लोक मालूम है, नहीं मालूम? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। चार पाद यानी चार चरण हुए, आठ आठ का एक हुआ वहां पर। कैसे? नमः श्री वर्धमानाय, आठ समय सार में भी ऐसा है, नमः समय साराय, आठ है ना? ऐसे नमः श्री वर्धमानाय, फिर निर्धूत कलिलात्मने, फिर आठ, दो पाद हुआ एक लाइन में। फिर सालोकानाम, स आलोक, आलोक सहित त्रिलोकानाम, ये आठ, तीसरा पाद हुआ। यद विद्या दर्पणायते, फिर आठ, आठ 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 बत्तीस हुआ और उसका ये आर्या छंद हुआ। अलग अलग अभी तो हमने आप हिंदी में पढ़े हुए, कोई मंदाक्रांता है, कोई शार्दूलयुत्रीडे है, कोई भुजंग प्रयात है, कोई शिखरिणी है, कोई कुंडलिनी है, उसके अलग अलग नंबर ऑफ, उसकी जो नंबर होते हैं अक्षरों की संख्या, केवल अक्षर नहीं, कहाँ ह्रस्व दीर्घ होता है वो भी हनक की होता है, उसकी वो विशेषताएं होती है, उसी को वो छंद कहने में आता है। ये मराठी में स्कूलों में पढ़े थे, अभी उसमें से थोड़ा थोड़ा याद है वो बता रही हूँ। तो ये वाङ्मय को इसको पद्य कहते हैं, गद्य और पद्य। गद्य ने जो हम ये जल्दी समझता है, अपनी भाषा समझने के लिए हमको क्या करें। इस धर्मामृत ग्रंथ को 2000 पद्यों में रचने का संकल्प ग्रंथकार ने किया। वे भोगे जीवों से उसको श्रवण करने का अनुरोध करते हैं। जिन जीवों में अनंत ज्ञानादि को प्रकट करने की योग्यता होती है उन्हें भोगे कहते हैं। अनंत ज्ञानादि कहो या केवल्यान कहो या सिद्धावस्था प्रकट करने योग्य, भोगे सिद्धिक भी कहते हैं उनको, और वे ही सम्यक दर्शन भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो समय दर्शन प्राप्त कर रहा है उसका अर्थ है वो निश्चित रूप से भव्य, और अभी समय दर्शन प्राप्त हुआ है ना उसका तो वो तो मोक्ष मार्ग शुरू हो गया अभी उसका, भले वो मिथ्यात्व में भी चला जावे परंतु अभी उसका संसार अंत हो गया, यानी वो अर्धपुद्गल मैक्सिमम भटकेगा, तो भी जरूरी नहीं उसको भटकना पड़े, इसलिए वो कहते हैं, यहाँ लिखा है भव्य, उसको कहते हैं वे भव्य जीवों से ये धर्मामृत को उसको श्रवण करने का अनुरोध करते हैं। जिन जीवों में अनंत ज्ञानादि को प्रकट करने की योग्यता होती है उन्हें भव्य कहते हैं। उन भव्यों को ग्रंथकार ने धी धनाहा कहा है। धी अर्थात अष्ट गुण सहित बुद्धि ही जिनका धन है। धी ने बुद्धि जो उसे ही अति पसंद करते हैं। इस शास्त्र को श्रवण करने का लाभ बतलाते हुए वह कहते हैं, यदि दुखों से रहित अनाकुलता रूप मोक्ष सुख को चाहते हो तो इस शास्त्र को सुनो। निर्दुखम सुखम इच्छन्तो, ये ऊपर लिखा था ना, दुख रहित सुख के अभिलाषी। कैसा सुख है? दुख से रहित ऐसा सुख है। यदि दुखों से रहित अनाकुलता रूप मोक्ष सुख को चाहते हो तो इस शास्त्र को सुनो। सांसारिक सुख तो दुखों से रिला मिला होता है। वो सुख सुख कैसा, जिसका जिसके पीछे वो दुख है, रचा पिटा रिला मिला, यानी वो तो सच्चा सुख है ही नहीं संसार में। जो कुछ सुख जीव कहते हैं तो वो भी दुख ही है। हाँ, आचार्य कुमकुंद ने प्रवचन सार में कहा है कि जो सुख इंद्रियों से प्राप्त होता है वह पराधीन है। ये हमने देखा था ना कितनी बार, बाधा सहित है। असाता वेदनीय का उदय आने पर विच्छिन्न हो जाता है, क्योंकि वो कर्म के उदय से बदलता रहता है। उसके भोगने से राग द्वेष होता है, अतः नवीन कर्मबंध का कारण है, तथा घटता बढ़ता होने से अस्थिर है, अतः दुख रूप ही है। यानी जो इंद्रियों से सुख की बात करते हैं वो भी कैसा पराधीन और दुख रूप है, उसकी बात यहाँ बता रहे हैं।
ये श्लोक दिया है यहाँ,
हाँ वो लिखा है उन्होंने ऊपर, पीछे लिखा होगा पेज नंबर 13 पर है। उन्होंने मूल संस्कृत टीका में दिया है उसको, ये हमने पढ़े भी थे। देखो ये हम पढ़ेंगे उसको यहाँ। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये हि लब्धम तम सुखम दुःखमेव तः। इसी का भी हमने अर्थ पढ़ा। ऐसी प्रसिद्धि है कि, यानी ये बात वेल नोन है, क्या है, मंगल निमित्त हेतु प्रमाण नाम और शास्त्रकर्ता, क्या क्या बातें बताई, यानी इन छो का कथन करने के बाद शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। ऐसी परंपरा चली आ रही है। पहले में पहले मंगल कहेंगे, ये शास्त्र क्यों बना, किसके निमित्त से, जैसे वो जीव कांड में भी शुरुआत में बताया किसके निमित्त से बना, जैसे चामुंडराय ने वो प्रश्न किया था और उसके निमित्त से वो बनाया। आप अभी वो प्रूफ रीडिंग करती ना तो पता है आपको। तो मंगल फिर निमित्त हेतु, उसका प्रयोजन क्या है, प्रमाण यानी कितना बड़ा होगा, अभी पहले वो नक्की किया उन्होंने। शास्त्र का नाम और शास्त्रकर्ता का नाम, इन छह का कथन करने के पश्चात आचार्य को शास्त्र का कथन करना चाहिए, ये पद्धति है। अतः यहाँ इन छह का कथन किया जाता है। मम अर्थात मल का, पाप का जो गालन करता है, नाश करता है, या मंग अर्थात पुण्य को लाता है, उसे मंगल कहते हैं। मंगल शब्द कैसे तैयार हुआ, मम गालयति इति मंगल, मम यानी पाप को गालता है यानी गलन करता है यानी नष्ट करता है, या मंगम लाती यानी सुख को जो उगाता है वो मंगल है। वह मंगल प्रारंभ किए गए इच्छित कार्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए किया जाता है। ये यहाँ कार्य शुरू किया है ग्रंथ रचना का, वो निर्विघ्न समाप्त हो इसलिए यहाँ मंगल किया जाता है। मंगल के दो प्रकार है, मुख्य और गौण, तथा मुख्य मंगल के भी दो प्रकार है, एक अर्थ रूप और दूसरा शब्द रूप। उनमें से अर्थ रूप मुख्य मंगल भगवान सिद्ध परमेष्ठी आदि के गुणों के स्मरणादि रूप में पहले ही किया गया है। अभी हमने देखा ना सिद्धों को अरिहंतों को नमस्कार किया, उससे प्रारंभ करने के लिए इष्ट शास्त्र की सिद्धि में निमित्त अधर्म विशेष का विनाश और धर्म विशेष का स्वीकार संपन्न होता है। अधर्म विशेष का विनाश यानी पाप का विनाश और विशिष्ट धर्म विशेष का स्वीकार होता है। शब्द रूप मुख्य मंगल अनंतर ही श्लोक में, श्लोक के आदि में अथ शब्द का उच्चारण करके किया है, क्योंकि अथ शब्द भी मंगलकारक प्रसिद्ध है। कहा भी है शास्त्र के आदि में तीन लोकों के स्वामी को नमस्कार करना अथवा विशिष्ट शब्दों को स्मरण करना मंगल माना गया है। नीचे लिखा देखो, त्रैलोक्येश नमस्कार लक्षणम मंगलम मतम विशिष्ट भूत शब्दानाम शास्त्रादावथवा स्मृति। यानी नमस्कार करना ये भी मंगल है, या कोई विशिष्ट शब्दों का उच्चारण करना, मंगल शब्द जिसको माने गए हैं वो भी मंगल रूप से उसको बताया जाएगा। यहाँ लिखते हैं संपूर्ण कलश दही अक्षत सफेद फूल का उपहार आदि तो मुख्य मंगल की प्राप्ति का उपाय होने से अमुख्य मंगल कहे जाते हैं। पहले तो मुख्य मंगल है ये तो हमने सिद्धों को नमस्कार आदि किया, अब ये संपूर्ण कलश वगैरह जो कुछ है वो तो कहते हैं तो अमुख्य मंगल कहे जाते हैं। प्रतीत होता है कि ग्रंथकार ने इस ग्रंथ के आरंभ में उक्त अमुख्य मंगल को भी किया है, उनके बिना शास्त्र की सिद्धि संभव नहीं है। जिसके उद्देश्य से शास्त्र की रचना की जाती है वह निमित्त होता है। बहुव्याह रूप से यह उसका कथन किया ही है, क्योंकि उन्हीं के लिए यह शास्त्र रचा जाता है। बताया था ना बहुव्याह करके, बहुव्याह श्रुणत ये धर्मानुष्ठान था, बहुव्यों के लिए किया। किसके निमित्त से किया है तो बहुव्यों के लिए किया।
संपूर्ण कलश माने और कलश संपूर्ण कलश माने, क्योंकि यहाँ संपूर्ण कलश
दही अक्षत और सफेद वो अलग अलग लेना है।
हाँ अलग,
ये भी मंगल है। जैसे कलश ने वो घट रखा है उसके ऊपर वो तो नारियल रखा है उसको कहते होंगे शायद संपूर्ण कलश, या संपूर्ण का ऐसा भी है कि भरा हुआ कलश वो उसको भी कहेंगे ना। हेतु प्रयोजन को कहते हैं, यानी शास्त्र का प्रयोजन क्या है, तो सम्यक धर्म के स्वरूप आदि का कथन करूंगा उसे सुनो, इन दो पदों से प्रयोजन की सूचना की गई प्रतीत होती है। जिसके द्वारा कार्य में प्रेरित किया जाता है उसे प्रयोजन कहते हैं। ज्ञान के द्वारा ही शास्त्र श्रवण आदि क्रिया में प्रेरित होता है, इसलिए वही शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। यानी शास्त्र का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो ज्ञान कराना है। शास्त्र श्रवण आदि से मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, इस हेतु से ही शास्त्र में प्रवृत्त होता है। इसलिए इस शास्त्र का मुख्य प्रयोजन सम्यक धर्म के स्वरूप का ज्ञान ही है। यानी सम्यक धर्म का जो सम्यक स्वरूप है उसका ज्ञान कराना ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। आनुषंगिक प्रयोजन, आनुषंगिक यानी अनुषंग के साथ, उसके साथ साथ आने वाले आनुषंगिक सहचर। आनुषंगिक प्रयोजन धर्म की सामग्री आदि का ज्ञान भी है। पहले पहले धर्म का स्वरूप बताना, उसका ज्ञान होना, ये मुख्य प्रयोजन। अब जो धर्म की सामग्री है, उसके जो निमित्त है, वो आनुषंगिक उसको कहेंगे प्रयोजन। उसको जानकर सम्यक धर्म का पालन करने में लगा व्यक्ति अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, वितृष्णामय अविनाशी अतीन्द्रिय सुख, जिसमें कोई तृष्णा नहीं है, बिना तृष्णा वाला। ये लौकिक सुख क्या है, वो उसकी तृष्णा बढ़ती चली जाती है, और परम अव्याबाधत्व गुणों को प्राप्त करता है। इस प्रकार परंपरा से ये सब भी शास्त्र, इस शास्त्र के प्रयोजन है। यानी पहला प्रयोजन क्या लिखा, तो उसका सम्यक धर्म का स्वरूप का ज्ञान, और फिर वो धर्म प्रकट होकर मोक्ष की प्राप्ति होना, ये उसका प्रयोजन परंपरा से। वास्तव में पुरुष सुख या दुख निवृत्ति को ही चाहता है। निर्दुख सुख इन दो पदों से वह बात कही है। प्रमाण 2000 पद्य द्वारा बतला दिया गया है, अर्थात इस ग्रंथ का प्रमाण 2000 पद्य है। इसका नाम धर्मामृत है, यह भी पहले व्युत्पत्ति द्वारा बतला दिया है। अहम यानी मैं पद से कर्ता भी कह दिया है, यानी अहम इस शब्द से कर्ता भी बताया उन्होंने। अर्थ रूप से और ग्रंथ रूप से मैंने ने आशाधरने इसकी रचना की है। अर्थ रूप से मैं इसका अनुवादक मात्र हूँ। जो बात पूर्वाचार्यों ने कही है उसे ही मैंने कहा है, और ग्रंथ रूप से मैंने इसके पद्यों की रचना की है। इस शास्त्र का और इसमें प्रतिपाद्य सम्यक धर्म स्वरूप आदि का प्रतिपाद्य ने जो बताया जा रहा है, वाच्य वाचक भाव रूप संबंध है। वाचक यानी बताने वाला, ये शब्द होता है वो वाचक होता है। जैसे हमने कहा पेंसिल, ये तो शब्द है, वो ये पेंसिल नामक वस्तु को बताने वाला है। तो पेंसिल शब्द है, वो वाचक है, ये पेंसिल वस्तु है, उसकी वाच्य है। तो वाच्य वाचक भाव रूप संबंध है, यह इस ग्रंथ के नाम से ही कह दिया गया है। अतः यह ग्रंथ सम्यक धर्म के अनुष्ठान और अनंत सुख आदि का साधन रूप ही है, यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए। इससे शास्त्र के संबंध, अभिधेय और प्रयोजन रहित होने की शंका का निराश हो जाता है। निराश यानी वो निराशा वाला निराश नहीं, निराकरण हो जाता है। क्या है यानी शास्त्र का संबंध क्या है, अभिधेय यानी नाम क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, ये इसके बिना वाला है ये शास्त्र, ऐसी बात नहीं है। उस एक ही श्लोक में ये सभी बातें बताई दी गई। यही रुकेंगे हम।
जावानी के ज्ञान ते सूजे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा देत हो।